स्वयं परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हमने भजन संहिता भाग तक पढ़ा लेकिन उसी से संबंधित जब फिलिप भाई यहां पर बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि आज का दिन पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है, ऐसा चयन करता है। कई लोग सोचते हैं हमारे देश में जो त्योहारों से भरा हुआ देश है और लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियन के पास तो कोई त्योहार नहीं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि क्रिश्चियन के पास सबसे ज्यादा त्योहार है, क्रिश्चियन के पास सबसे ज्यादा त्योहार है। लेकिन क्रिश्चियन को सोचता है क्या वो त्योहार की रीति से मनाता है, जब साल में दो बार तीन बार या पांच बार आपके त्योहार आते हैं आप कितनी तैयारी करते हैं। लेकिन एक मसीह के लिए क्रिश्चियन के लिए हर एक रविवार त्योहार है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जी उठा देना है। और यदि ये मानता और ईमान सिखाता आपके मेरे और जीवन में हो तो हमारी रविवार के आराधना में आना हमारे भोजन नहीं होगा लेकिन हम सैटरडे से पूरा से तैयार होकर अपने आप की अपने आप में प्रतीक्षा करेंगे कि द्वारा हमें परमेश्वर के भवन में जाना है। सो हमारे सोच हमारे विचारों में बहुत सारी चीज मसीह जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार सोच समझ के साथ संतुलित करके आगे बढ़ने वाला जीवन परमेश्वर के वचन का आधार। सो आज जो दिन है जैसे कहा है ये पांच सजे जो खजूरों का दीवार का रविवार करा जाता है, बहुत सारा चर्चेस में बहुत सारे खजूरों के द्वारा चर्च सजे होंगे, लोग खजूरों की कई क्रॉस बनाएंगे कई पुल बनाएंगे और एक दूसरे को लगाएंगे। हम उसके किसी भी नकारात्मक बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन ऐसा सच अलग अलग तरीका पर ये एक ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना है और इसलिए आज उसको स्मरण किया जाता है। सो आज के दिन जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो आज के बाद पूरा हफ्ता कल सोमवार का दिन प्रभु यीशु मसीह जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए सोमवार के दिन एक और घटना होती है कि वो मंदिर की सफाई करते हैं और मंदिर के ब्रज को साफ देते हैं, वहां पर कुछ अपना शिक्षक को शिक्षा देते हैं। तब मंदिर मंगल के दिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो मंगल के दिन में बहुत सारे यहूदी होते हैं, बहुत सारे वाद विवाद होता है जो द्वितीय आगमन के बारे में है या विवाह के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के बारे में जो मती आगे चलकर 22 से 24 अध्याय में वर्णन करता है। तब उसके बाद मंगलवार के दिन जनों के बाद जब बुधवार को प्रभु यीशु मसीह का एक विश्राम दिखाई देता है लेकिन बृहस्पतिवार के दिन प्रभु यीशु मसीह अंतिम फसला के बोझ में सम्मिलित होते हैं और बोझ में सम्मिलित होकर अपने शिष्य से बातचीत करते हैं और बहुत समय पूरे सुबह से लेकर उस समय में तक वो अपने शिष्यों के सामने वो बहुत भेद की बातों को वर्णन करते हैं जिसको यूहन्ना 13 अध्याय से आगे वर्णन करता है और हर पुस्तक में सुसमाचार में जब प्रभु बोझ के बाद के आगे वर्णन है वो उसमें वर्णन करता है। लेकिन उसी दिन शाम को शाम को प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और उनको अरेस्ट कर जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है वो यहूदा के द्वारा। यहूदा उनका एक 12 शिष्यों में से एक शिष्य है, वो चुमा देकर यीशु मरवाता है। तब उसके बाद रात भर प्रभु यीशु मसीह को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना पड़ता है, राजा के सामने, याजक के सामने, महायाजक के सामने और उसके साथ साथ राजपाल के सामने और तब शुक्रवार की सुबह 9 बजे उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता है। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वो क्रूस पर हम लोग केवल 12 से 3 स्मरण करते नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक क्रूस पर थे और तब उसके बाद उनकी मृत्यु होती है और उनका दफनाया जाता है और शनिचर के दिन में प्रभु यीशु मसीह कब्र में विश्राम करते हैं और तब उसके बाद इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं और जिसको हम ईस्टर कहते हैं। तो ये पूरे हफ्ते का क्रम है जो आज से शुरू हो जाता है और इसीलिए गुड फ्राइडे के दिन शुक्रवार के दिन विश्वास के लोग कलीसिया के लोग और मसीह लोग जो है कहीं भी है वो आराधना करते हैं। सो ये एक तरह से पूरा लेकिन आज का दिन जो है आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। ये एक ऐसी घटना थी जिसको चारों सुसमाचार ने बहुत सुंदर रीति से वर्णन किया है। मती 21 अध्याय में वर्णन करता है पहले पद से लेकर आगे 11 पद तक, लूका सॉरी मरकुस 11 अध्याय में वर्णन करता है 1 पद से लेकर 10 पद तक, लूका 19 अध्याय में वर्णन करता है 28 पद से लेकर 40 पद तक और यमुना 12 अध्याय में वर्णन करता है। यद्यपि यमुना का वर्णन करना थोड़ा सीमित है, परंतु मत्स्य मत को शुरू कर 30 सुषमाचार से लेकर इस घटना को बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हैं। और जो आज हम सुबह इस घटना पर वर्णन करना चाहे देखना चाहेंगे, आइए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा मत्स्य रचित सुषमाचार उसका 21 अध्याय पहले पद से लेकर 11 पद तक। जब ये निश्रम के निकट पहुंच कर जैतून पर्वत पर थके तो आए तो यीशु ने दो चेलों को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उनको खोल कर मेरे पास लाओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना प्रभु को इनकी प्रयोजन इनकी आवश्यकता है और वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन नबी के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, सियोन की पुत्री से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता, वो नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर वरन दत्त के बच्चे पर बैठा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था वैसा ही किया। उन्होंने गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने वस्त्र डाले और वो सवार हो गया। भीड़ में से बहुतों ने अपने वस्त्र मार्ग में बिछाए और दूसरों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ उसके आगे जा रही थी वो और वे भी जो उसके पीछे चले आते थे पुकार कर कह रहे थे, दाऊद की संतान को होश आना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, सर्वोच्च स्थान में हो सका। जब उसने यरूशलम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और सब कहने लगे ये कौन है, और भीड़ के लोग कह रहे थे ये गलील के नासरत का नबी यीशु है, ये कौन है। और आज सुबह हमें सिर्फ तीन विशेष बातों पर ध्यान करना चाहिए। पहली बात है यीशु राजा का सर्व ज्ञान, दूसरा यीशु राजा का सर्व अधिकार और तीसरा यीशु राजा का राज। ये तीन मुख्य बातों पर आज सुबह विचार करना चाहेंगे। हमने इस घटना को पढ़ लिया सुन लिया, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे, लेकिन प्रवेश करने से पहले यरूशलेम जहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं जानते थे, जैसे मैंने कहा पहली बात ये राजा का सब क्या, और आपको अभी बताया गया है जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, उन्होंने लोगों को चंगाई दी, मुर्दों को जलाया और ऐसे में उनके सामने कई समय ऐसे आए जो लोग उनको सोच रहे नहीं यीशु को राजा होना चाहिए, नहीं यीशु को राजा होना चाहिए, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस समय उनका ध्यान दे दिया। अगर आप यमुना उसके छठे अध्याय में पढ़े मत्ती भी वर्णन करता है, लेकिन छठे अध्याय में आप 20-22 पद पढ़े तो वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी भीड़ को खिलाया और लोग तृप्त हुए, और जब लोग तृप्त हुए होने के बाद 12 टोकरे बच कर निकले तो लिखा हुआ है भीड़ बलपूर्वक यीशु को राजा बनाना चाहती थी। भीड़ बलपूर्वक आइए मैं याद निकालिए यमुना रचित सुषमाचार उसका 6 अध्याय उसका 15 पद है। इसलिए यीशु ने जानकर कि वे मुझे बलपूर्वक राजा बनाने के लिए ले जाना चाहते हैं वो फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। क्यों ये लोग उसको राजा बनाना चाहते थे और बहुतों को उसने खिलाया है, अब इसको राजा बना दिया जाएगा हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी, हमें तो खाने को मिलेगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये लोग दिन पर बैठे हुए थे ना काम कर रहे थे ना कुछ करते, लेकिन प्रभु ने ध्यान में होकर उस भीड़ को क्या उसको तृप्त किया तो अब इन्होंने कहा ओ ये बहुत अच्छा राजा। लेकिन एक और समस्या उनके साथ थी, क्योंकि ये रोमी शासन की अधीनता में थे और जो रोमी शासन की अधीनता में रहते हुए ये लोग इस बात की चाह कर रहे थे कि कोई ऐसा राजा आ जाए जो इसको छुड़ा ले और रोमी शासन के अधीन तक रहते हुए उस सारे जो उनका शासन का दबाव है जिसके कारण पीड़ित है उससे आजाद कर ले। جب ہم پرانے نیم میں دیکھتے ہیں تو پرانے نیم میں اسرائیل لوگ مصر کی غلامی میں قریب 430 سال تھے اور وہ چلا رہے تھے, پکار رہے تھے, اور پرمیشن نے ان کی پکار کو سن کر موسیٰ کو کھڑا کیا جو ایک آئے کا حق ہوا تھا, اور انہوں نے موسیٰ نے ان کو مصریوں کی غلامی سے آزاد کر کے کنعان میں پرویش کرایا. ابھی بھی ان کے اندر کوئی وچار آگے تک کیا دیکھیں گے, ان کے اندر ان کی جو بھاونا ہے وہ کیول شاریک اچھاؤں کی بھاونا ہے, سرداری کی اچھاؤں کی بھاونا ہے. وہ یشو کو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں جاننے پا رہے, وہ یشو کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ راجہ بن جائے گا تو ہماری جو پرتھوی کی جو سنساری کرنا ہے, روٹی کپڑا مکان, یہ ہماری پوری ہو جائے گی اور ہم بہت اچھے ہیں. لیکن پربھو لکھا ہے وہ ان کے بیچ میں سے نکل گئے, کیونکہ اس کا ادیش کچھ اور تھا, اس کا ادیش کچھ اور تھا. پربھو یہاں پر وہ سمے آ گیا جب وہ جانتا ہے کہ اب میرا سمے آ گیا ہے اور اب مجھے اپنے آپ کو اس پرکار سے پرگٹ کرنا ہے. اور اس لیے یہاں پر پہلے پر لکھا ہے جب وہ یروشلم کے نکٹ میں آیا تو وہ کیونکہ سب کچھ جانتا ہے, سب گیانی پرمیشور ہے, جب اس نے سیوا آرمبھ کی بہت سارے سمے میں بار بار اس نے کہا میرا سمے نہیں آیا, میرا سمے نہیں آیا. یونا اگر اس پہنچا تو پڑھنا شروع کرے اس کے دوسرے اتہ میں جب اس نے پہلا آشکم کیا تو پہلے آشکم کے جب مریم اس کے پاس آتی ہے وہ کہتا ہے میرا ابھی سمے نہیں آیا, اور پہلے دوسرے اتہ سے لے کر 13 ہے بار بار اس نے کہا میرا سمے نہیں آیا. لیکن جیسے 13 میں پربھو یشو مسیح اپنے شیشو کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا سمے نکٹ, میرا سمے آ گیا, اور وہ جانتا تھا کہ اس کا سمے آ گیا کہ وہ اس پرمیشور پتا کی سناتن یوجنا کو پورا کرے, اور اس لیے اس نے اب یہاں پر کیا کیا اور اس نے یہاں پر کچھ دو شیشوں کو بھیج دیا. وہ سب جانی پرمیشور لوگ نہیں سمجھ رہے لیکن کیا کر رہا ہے وہ, اور اس نے کہا اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ, وہاں پہنچتے ہی تمہیں ایک گدھی کا کے ساتھ اس کا بچہ بنا میں وہ ملے گا, ان کو کھول کر لے میرے پاس لے آؤ. شیشے گئے اور تب وہ کہتا ہے تیسرے پد میں یدی تم سے کوئی کچھ کہے تو کہنا پربھو کو ان کی آوشکتا ہے. جب ہم اس پورے سر کو پڑھتے ہیں تو پربھو یشو مسیح کے لیے یہاں پر 5 ایسے اپنام دیے گئے ہیں, 5 ایسے ٹائٹل دیے گئے ہیں جو اس کی پوری جو پربھوتا کو, اس کے ادھیکار کو, اس کے آنے کے ادیش کو سب کچھ ورنن کر رہے ہیں. اگر ہم نیچے سے چلتے اوپر تو اور اچھا لگتا, لیکن پھر بھی ہم کرم سے اوپر جائیں گے. اس نے کہا پربھو کو اس کا پروجن ہے, کیا مطلب ہے, وہ پربھو یشو مسیح اس بات کو پرگٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ پربھو تا کہنے والا پرمیشور ہے. تم اس کو یہ کیول یہ سمجھ رہے ہو کہ کیول یہ ایسا ہے جو شاید راجا ثابت کرے گا اور راجا ثابت کر کے ہمیں کیول اس سے چھڑائے گا یا ہم تھوڑا اپنی آستھاؤں پورا کر کے, لیکن نہیں, وہ سب گیانی پرمیشور ہے, سب ادھیکاری پرمیشور ہے. جاؤ کھول کر لاؤ اگر کوئی تم سے پوچھے تو اس سے کہنا پربھو کو اس کی آوشکتا ہے. تب اس کے بعد آگے تک کے کہتے ہیں لکھا ہوا ہے, اور اس لیے یہ اس لیے ہوا کہ جو وچن نبی کے دوارا کہا گیا تھا وہ پورا. کیوں, پربھو یشو مسیح وہ پربھو ہے جس کے ادھیکار میں ساری پربھوتا ہے, جو آدی اور انت ہے, جو سب کچھ کو جانتا ہے. ادن کی واٹیکا میں جب منوشیہ پاپ پہ گرا تھا اور پاپ پہ گرنے کے کارن منوشیہ پرمیشور سے الگ ہو گیا تھا اور پاپ کے کارن منوشیہ کے پاس دن کی آگیا آ گئی تھی, اس پاپ کے کارن منوشیہ پرمیشور نے کہا تو نے ایسا کیا ہے اس لیے تیروں پر ہوگا. لیکن اسی سمے پرمیشور نے اپنی ایک یوجنا کو منوشیہ کے لیے دے دیا تھا, اور وہ یوجنا یہ دے دیا تھا کہ جو جب ہم متیوس کے 3:15 میں پڑھتے ہیں کہ وہ تیرے اور اس استری کے وش کے بیچ میں بیر اتپن کرے گا, تو اس کی ایڑی کو ڈسے گا اور وہ تیرے سر کو پوچھے گا. کیا مطلب, ये वहां की, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह सारी चीजों को जानते थे, परमेश्वर की योजना उस अनादिकाल की योजना क्या है और किस प्रकार से उस अनादिकाल की योजना क्रम से पूरी हो रही है। और वो समय अब आ गया है जिस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, वो अनादिकाल की योजना। और वो प्रभु है, सब कुछ को जानने वाला प्रभु है, उसके पास सब अधिकार है, उसके पास सब ज्ञान है। ये ज्ञान ये है कि वो नबियों के द्वारा जो कुछ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया था वो अपने समय के अनुसार पूरा हो। वो सब ज्ञान परमेश्वर, सब अधिकारी परमेश्वर। इसलिए सिय्योन की पुत्री देख, तेरा राजा तेरे पास चला आता है। हमने अभी वचन संहिता 72 पढ़ा और 72 भजन संहिता 72 मेहमान से मेरे साथ निकालने का प्रयास करिए, तब उसके एक दो पद को मैं आपके साथ लाना चाहूंगा। क्या वो लिखा हुआ है 8वें पद में, उस समुद्र से समुद्र तक तथा महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करे। 11 पद में, सब राजा उसे दंडवत करें, सब जातियां उसके अधीन हो जाएं। ये प्रार्थना की आत्मा में भविष्यवाणी है जो आने वाले राजा के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह राजा है। ये नबियों के वचन हैं, और वो नबियों के वचन जो बार बार, समय नहीं है, अगर वचन संख्या 2 आप पढ़ेंगे, वचन संख्या 84 आप पढ़ेंगे, वचन संख्या 28 आप 18 पढ़ेंगे, आपको बार 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 वो भविष्यवाणी मिलेंगी जो प्रभु यीशु मसीह के राजा के आने के रूप में दी गई है। वचन का बहुत बहुत बार सारी चीजों को वर्णन करता है, लेकिन लिखा हुआ है यहां पर कहता है वो प्रभु का करे, वो नम्र है, वो दूसरे राजाओं के समान नहीं है। उसकी नम्रता का प्रमाण यह है, फिलिपियों के दूसरे अध्याय में इस बात ने स्पष्ट लिखा हुआ कि उसकी नम्रता नम्रता कल, और उन्होंने प्रचार करते समय इस बात को शेयर किया कि उसकी नम्रता थी कि वो ऊपर से नीचे आ गया। और उन्होंने बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए ऐसा है कि एक बहुत बड़ा राजा है, उन्होंने किसी प्रेसिडेंट का नाम लिया, एक बहुत बड़ा शासक है, अधिकारी, और वो कहे कि मैं शासक उस छोर को छोड़ करके मैं बाहर विदेश में, कोई बहुत बड़ा पद का है, और मैं भारत में आ जाऊं, ठीक है यानी, लेकिन उसको छोड़ करके मैं फलाने राज में चला जाऊंगा जो राज को शायद बहुत लोग नीचा मत समझते हैं, या उस राज से वो आगे कहे नहीं मैं उस शहर में चला जाऊंगा, या उस शहर से कहे नहीं मैं उस गांव में चला जाऊंगा, नहीं वो कह के नहीं मैं उस गांव से भी मैं उस घर में चला जाऊंगा जिस घर को कोई पहचानता नहीं, जो बिल्कुल निकृष्ट और तिरस्कृत है, जहां तक भी नीचा हो सकता थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस दम तक आरोप छोड़ा। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह की विशेषता, इसीलिए तो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए तो यहूदियों ने आज तक उसको स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तो आज तक, क्योंकि उनकी धारणा थी अरे कोई बासी आएगा, कोई राज आएगा तो वो राज घराने में पैदा होगा, एक बड़ा बड़े स्थान में होगा, उसके लिए बहुत सारे जलसे किए जाएंगे, तैयारी की जाएगी, धूमधाम मनाई जाएगी, लेकिन वहां तो उल्टा ही हुआ। पर ये लोग आज जो उसके नारे लगा रहे हैं, ये अभी भी सच्चाई को समझते नहीं है, उनकी धारणा कुछ और है, क्योंकि यही लोग जो रात नारे लगा रहे हैं कल गुड फ्राइडे के दिन जब हम उसको स्मरण करते हैं वो चिल्लाएंगे इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो, और वो नम्र होकर उस स्थान पर क्रूस को लेने के लिए तैयार, वो नम्र है, वो गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर और साधु के बच्चे पर बैठा है। वो समझ, जब राजा लोग उस समय प्रवेश करते थे तो उनके लिए बहुत बड़ा रथ बनाया जाता था, जब राजा लोग प्रवेश करते थे तो उनके लिए बहुत अच्छा वैभव कीमती घोड़ा देखा जाता था, और घोड़े उस समय मिस्र में ज्यादा सब प्रसिद्ध थे और राजा लोग अधिकतर मिस्र से घोड़े चलाया करते थे, जबकि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में यह आज्ञा दे दी थी, व्यवस्था विवरण उसके 16 अध्याय में, कि तुम राजा जो हो पर अपने घोड़ों को मिस्र से मत मंगवाना। लेकिन उस समय लोग ऐसा करते थे और घोड़े को चलाकर उस पर सवारी करते थे और लोग कहते थे राजा, लेकिन उसकी सवारी को चुन लिया। देखिए परंपरा ने नियम में एक व्यक्ति को और देखते हैं, जब वो राजा बना उसका राजा का अभिषेक हुआ तो इसी तरह से वो खच्चर पर बना के घुमाया गया था और उसका नाम सुलेमान, सुलेमान। समय नहीं कि हम पीछे उस पर जाए, लेकिन ये है ये परमेश्वर के वचन की पूर्ति हो रही है कि वो राजा जो किस प्रकार से नम्र है, जिसने अपनी नम्रता में अपने आप को छोटा किया है उन लोगों के साथ, और वो उस स्थान पे चल रहा है, लोग उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तब उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं उस पद में चेलों ने जाकर उस यीशु का निर्देश के अनुसार दिया और वैसे ही किया। क्या न केवल सर्वज्ञानी है लेकिन सर्वाधिकारी है, उसके पास अधिकार है आज्ञा देने का, उसके पास अधिकार है उस सारी सृष्टि की जो भी चीज है उसको अपने लिए इस्तेमाल करने का। वो मेरे और आपके जीवन का सर्वाधिकार है। मेरे प्रियो कई बार हम प्रभु के अधिकार से अपने आप को भगाना चाहते हैं, प्रभु दिखाना चाहते हैं उस अधिकार को, वो कठोरता के साथ नहीं लेकिन प्रेम के साथ, दया में होकर, नम्रता में होकर अपने अधिकार को दर्शाना चाहते। अगर उस अधिकार को स्वीकार करके हम अपने जीवन को उसके हाथों में लेते हैं तो हमारा जीवन आशीष का कारण बन सकता है, न केवल परमेश्वर के द्वारा हमें आशीष लेकिन हमारा जीवन दूसरों की आशीष का कारण बन सकता है कोई भी चीज। लेकिन अगर हम उस अधिकार के का तिरस्कार करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पद को, जब मैं स्मरण करता हूं तो मैं हमेशा डॉक्टर बिली ग्राहम को स्मरण करता हूं। क्या हो रहा है, आगे चल रहे हैं, आगे चल के ठीक है उन्होंने कहा है गधे के बच्चे पर उनको अपने वस्त्र डाल दिए और सवार हो गए और लोग वस्त्र बिछा रहे हैं, पेड़ डालियां काटी जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है, लोग होशंगा के नाल लगा रहे हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम से किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब जब आप प्रचार करते हैं, आप तो बहुत बुजुर्ग हो गए, चर्च में भी नहीं जा पा रहे, उनके शरीर में कंपन की बीमारी शुरू हो गई, अपने जीवन के अंतिम समय में है, लेकिन अपने घर में बैठकर जो भी संदेश था उसको वहीं पर अपने यहां बैठकर वो वॉच करते अपने कलीसिया से। लेकिन जब एक समय था आपके बहुत लोग उनके सभाओं में आते थे तो उनसे पूछा, डॉक्टर साहब जब आप प्रचार करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके प्रचार को सुनकर क्या सोचते हैं, उन्होंने कहा बात है, मैं अपने यीशु का गधा हूं, मैं अपने यीशु का गधा हूं। क्या मतलब, तब उन्होंने संकेत किया और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह गधे पर बैठे थे, लोग फूल डाल रहे थे यीशु पर लेकिन वो फूल गधे पर गिर रहे, लोग वस्त्र बिछा रहे थे यीशु के लिए लेकिन गधा उस पर चल रहा, गधा उस पर चल रहा। मेरे प्रियों क्या मतलब है इसका, प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर भी अपने उस नम्र राजा के उस अधिकार के साथ साथ इस चीज को दिखा रहा है कि जो उसके साथ है वो उसको न केवल अपने में इस्तेमाल करता है लेकिन अपनी महिमा का काम भी बनाता है, एक मसीह जीवन से बनाता है। मेरे प्रियो ये राजा केवल अधिकार चलाने के लिए, क्षमा कीजिए मैं कह रहा हूं, अभी कितना हमें इस इलेक्शन के समय में सुन रहा है प्रधानमंत्री के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा है, कितने वाद विवाद हो रहे हैं, कितने कोर्ट में लोग जा रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया, क्यों होड़ लगी है एक शासन को पाने के लिए, एक शासन, ये शासन अल्प समय का है, नहीं मालूम कि 5 साल भी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, नहीं मालूम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का शासन अनंत का शासन है, वापस को वो किस प्रकार से प्राप्त करना चाह रहा है। हम एक पिक्चर तस्वीर देखते हैं और वो तस्वीर अधिकतर आपने देखी होगी, राजा का राजा एक तस्वीर है और एक और ध्यान का सागर है प्रभु यीशु मसीह की। उसमें यहूदा स्मृति को दिखाते हैं, सॉरी माफ कीजिए, बरअब्बा को दिखाते हैं। बरअब्बा एक बार यीशु मसीह के पास आया, नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम, बाइबल में पढ़ा नहीं, लेकिन उस तस्वीर में आता और प्रभु यीशु मसीह से कहता है देख, क्योंकि उसने सबके नाक में दम कर रखा था, उसने कहा तू आश्चर्यकर्म करता है, तू ये करता है, तू करता है और मेरे पास तलवार में बल है, अगर तू मेरे साथ मिल जाए तो मैं अपनी तलवार से और तू अपने कार्य से ऐसा करके हम अपने राज को बना दें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस राज के विस्तार में करेंगे, मैं राज का विस्तार करूंगा। पतरस से जब तलवार उठाई, पतरस ने कहा तलवार तो नीचे रख दे, मैं राज का विस्तार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन मेरे और आपके लिए एक नम्रता का जीवन, एक आदर्श का जीवन, और मेरे प्रियो ये नम्रता हमें प्रभु की करीबता में लाती है, ये नम्रता हमें प्रभु के सामने झुकाती है, ये नम्रता हमें प्रभु को स्वीकार करना सिखाती है, ये नम्रता हमें अपने जीवन को प्रभु की अधीनता में डालने से तैयार करती है। आगे चलते तब लोग चिल्लाने लगे और तब कहते हैं जो भीड़ उनके आगे आगे जा रही थी उसके पीछे चले आते हुए कार कर कहा, कह रहे थे दाऊद की संतान, क्यों दाऊद की संतान, मती करीब 8 बार पूरी अपने पुस्तक में दाऊद की संतान के शब्द के रूप में आराम से इस्तेमाल करता है, बार 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 यीशु को दाऊद के संतान के लिए इस्तेमाल करता है। सबसे पहले हम 9 अध्याय 27 पद में देखते हैं, दाऊद परमेश्वर की ओर से चुना गया राजा था, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर ने दाऊद से यह वाचा बांधी थी कि तेरा राज सदा काल तक स्थिर रहेगा, वो उसके पुत्र सुलेमान के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के लोगों की भविष्यवाणी द्वारा अनुसार ये इस बार के और संकेत था कि जो आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। इसीलिए मत्ती के पहले अध्याय में जब हम उस वंशावली के बारे में देखते हैं तो इस बात को देखते हैं कि पहला पद उसका पहला पद इब्राहिम के वंशज दाऊद की संतान, इब्राहिम के वंशज दाऊद की संतान, और इसीलिए ये प्रभु यीशु मसीह से एक उपनाम था जो उसको दाऊद की संतान कहकर बार बार पुकार गया और यह भविष्यवाणी भी थी। और यहां पर कह रहा है दाऊद के संतान को होश चलना, धन्य है वो प्रभु के नाम से आता, होश चलना का मतलब है उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी बढ़ाई हो, और ये भीड़ उसकी बढ़ाई कर रही है। ये सच है हमारा यीशु न केवल प्रभुता करने वाला सर्वज्ञानी सर्व अधिकारी है, लेकिन उसकी प्रभुता के साथ साथ वही घोषणा के योग्य है, वही स्तुति प्रशंसा और बढ़ाई के योग्य है। और तब भी कहा है वो यीशु के नाम से आता है सर्वोच्च स्थान पर, क्या उसने सर्वोच्च स्थान में होता था, जब उसने यीशु में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। जब उसका जन्म हुआ था तब उस समय हलचल मची थी, कौन सा राजा उत्पन्न हो गया है, कौन सा राजा पैदा हो गया, और तब उस हलचल में कुछ महापुरुष आप देखते क्या हुआ, 2 साल तक के बच्चों को मार डाला राजा बेचैन। यहां पर भी हलचल है, कुछ नकारात्मक हलचल होती है, कुछ सकारात्मक हलचल होती है, लेकिन हलचल मची और तब हलचल मचने कहने लगे, सब ये कहने लगे प्रश्न ये कौन है। और मेरे प्रियो
ये प्रश्न उस समय से लेकर आज तक लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है। ये कौन है जिसके पीछे भीड़ चली आ रही है? ये कौन है जिसको लोग विश्वास कर रहे हैं? ये कौन है जो लोग जिसके द्वारा आश्चर्य हो रहे हैं? ये कौन है जिसके द्वारा चंगाई हो रही है? ये कौन है? ये प्रश्न उस समय से लेकर जब तक ये दुनिया रहेगी ये प्रश्न बार बार लोगों के द्वारा दबाया जाएगा, आज ही दबाया जाएगा। ये कौन है? प्रभु का धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभुता करने वाला है, सब अधिकारी है, सब ज्ञानी है। और ये है, और तब उसने कहा और भीड़ के लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ये गलील के नासरत का नबी यीशु है, एक नबी है। और यीशु नबी क्यों? व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय, किस प्रकार से उस समय प्रतिज्ञा की गई थी। यहां पर ये नबी केवल मूसा के लिए नहीं है, ये नबूवत, ये भविष्यवाणी, ये वचन, ये उस नबी के लिए है जो सनातन के लिए है, वो भविष्य और ये यहां पर यीशु की ओर संकेत है। और लोग उस नबी को किस प्रकार से देख रहे थे? मूसा की क्या विशेषता है? मूसा ने दो मुख्य कार्य किए थे। एक तो मूसा ने उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, दूसरा मूसा ने उनको तृप्त किया था, भोजन के लिए, पानी के लिए, सब कुछ। ये लोग इसी तरह से सोच रहे हैं, ये लोग इसी तरह सोच रहे हैं। ये होना भी है, अगर हम यमुना के सुषमाचार में जाएंगे, मैंने समय नहीं, मैंने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया, जहां पर लोगों के विचारों में बार बार कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सकारात्मक कोई नकारात्मक, कोई कह रहा नहीं प्रभु ये जो ये, तो कोई कह रहा ये, पूरा हमेशा उसके जीवन में जान जान पड़ा ये। लेकिन यहां पर नबी करके देख रहे हैं, लेकिन ये नबी उसका ही तो उपनाम है। मैंने कहा कि करीब 5 उपनाम यहां पर है, प्रभु, राजा, दाऊद के संतान, नासरत का नबी, यीशु। और ये 5 उपनाम यीशु की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, और अंतिम वो है, वो यीशु है, अर्थात वो उद्धार करता है। ये जो प्रभुता करने वाला है, जो अनंत का राजा है, प्रकाश वाक्य उसके 20 अध्याय में, 21 अध्याय में, 22 अध्याय में, उस अनंत राजा के देखते हैं, उसके राज को देखते हैं, अभी हम पद में जाएंगे उसके। और ये दाऊद की संतान है, जो मनुष्य बनकर स्थिति पर आया, उसकी स्थिति को इस तरह दिखाता है। ये नबी है जो लोग इस प्रकार से देख रहे हैं, लेकिन ये यीशु है जो उद्धार करता है। और ये यीशु इस प्रकार का राजा है जो मनुष्य के जीवन को या अपने राज की स्थापना करने के लिए उसने तलवारों का सहारा नहीं लिया, एक बड़ी सेना का सहारा नहीं लिया। जब पत्रस ने तलवार निकाली, यीशु ने कहा रोक, अगर मैं अपने पिता से कहूं तो वो इतने सदूतों की बात को भेज सकता है कि किसी की जरूरत नहीं, वो सब कुछ कर सकता था। उसने सारी चीज का सहारा नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह की राज की स्थापना धन, बल और शक्ति पर आधारित नहीं हुई, प्रभु की राज की स्थापना एक त्याग पर, समर्पण पर और बलिदान पर। और वो राज जो उसने क्रूस पर चढ़ करके अपने आप को बलिदान करके बचा। मेरे प्रियो, ये केवल पाप संडे केवल यीशु की जयकार करने की सीमित नहीं है, लेकिन ये सोच संकेत कर रहा है और ये जिन क्षण में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं, अब उसका समय निकट आ गया है, अब वो पकड़वाया जाएगा और पकड़वाया जाएगा, उसको दोष लगाया जाएगा। क्या दोष था उसका? जब लाजो के सामने था, लाजो से पूछा क्या तू राजा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? लाजो से कहा तू क्या? पर हां, बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा हां मैं राजा। उसने स्वीकार नहीं किया, अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन इससे पहले जो क्रूस पर जाए वो इस बात को स्वीकार करवाए, हां मैं राजा हूं, क्योंकि मैं एक राज की स्थापना करने के लिए आया हूं। वो राज इस पृथ्वी का नहीं है, लेकिन वो राज अनंत का राज है जो स्वर्ग का राज है, और उस स्थान का मैं राजा हूं। और जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां पर भी उसको यही नाम करके लिखकर ये यहूदियों का राजा, तीन भाषा में ये लिख करके काम कर रहा मेरे प्रियो। लेकिन ये राजा के साथ यीशु सब जुड़ा हुआ है, वो यीशु जो उद्धार कर, जो उद्धार के साथ मनुष्य के पापों के छुटकारे के साथ अपने राज की स्थापना किया है। और मेरे प्रियो धन्य है वे लोग जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप करके छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह के राज में उन्होंने प्रवेश किया, क्योंकि उनके साथ ये धन्य आशा जुड़ी हुई है। आइए हम प्रकाश वाक्य में जाना चाहेंगे और इस पद के साथ दो बातों के साथ प्रभाव करें। प्रकाश वाक्य उसका 19वां अध्याय, और जहां प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ लिखा हुआ है, फिर मैंने आकाश को खुला देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, वो धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है, उसके नेत्र आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। एक नाम लिखा हुआ है, उस नाम को कोई नहीं जानता। वो लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है, स्वर्ग की पहनाए श्वेत स्वच्छ और महीन पर्वत पैर में श्वेत घोड़े पर उसके पीछे पीछे चलती हैं, उसके मुख का से एक चौकी तलवार निकलती है और वो उससे जाति जाति का सम्मान करे, वो लोदन से शासन करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप का मदिरा का रसगुन रौंदेगा। उसके वस्त्र और चांद पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। राजाओं का राजा यीशु राजा, मेरे प्रियो राजा, राज सनातन का राजा। सारे राज शासन खत्म हो जाएंगे और तब उसके राज इसका आनंद का पता आनंद का उसने क्रूस पर मरने के द्वारा मारे जाने गाड़े जाने तीसरे दिन जी उठने के द्वारा इस बात को साबित कर दिया कि वो जी उठा प्रभु और राजा का राजा है। और उसने उस दिन से अपने राज की स्थापना आरंभ कर दी और आज पूरे विश्व में उसकी राज की स्थापना हो रही है। ये कलीसिया उसका राज है, और जो कुछ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु उसके अनंत राज का भागी बनता है। मेरे प्रियो प्रश्न, आप यीशु राजा को कैसे जानते हैं? आप यीशु राजा को कितना जानते हैं? आपने उस यीशु राजा को क्या अपने जीवन में उस राजा को स्वीकार किया? क्या उस राजा के राज में आप उस आनंद को पाना चाहते हैं जिस राज में शांति और आनंद है? शांति और आनंद है उसका राज, शांति और आनंद के साथ है। जब उसका जन्म हुआ था तब भी शांति की बात थी, यहां पर भी शांति की बात। लेकिन मेरे प्रियो यदि मनुष्य पाप पे है, पाप पे जन्म लिया है, पाप पे जीवन में नहीं कर रहा है तो पाप पे उसका अंत हो जाएगा। प्रत्येक प्राणी जो पाप करेगा निश्चय, परंतु प्रभु यीशु मसीह नमुल परमेश्वर नमुल राजा दयालु परमेश्वर इसलिए आया कि वो मेरे और आपके पाप को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान कराए, मेरे और आपके लिए दंड को चुका दे और मैं और आप उस बलिदान पर विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप करके उससे क्षमा मांग करके उसको अपने जीवन का राजा स्वीकार कर सके और उसके राज को अपने जीवन लेकर इस संसार में आगे बढ़ सके, ताकि चाहे मैं और आप इस संसार से चले जाए, चाहे वो अचानक इस संसार में आ जाए, वो मुझे और आपको अपने साथ अनंत काल के राज में रह सके। ये मेरी और आपकी कहानी तब محسوس سکتے ہیں. لیکن پرتی تب کیا ہے؟ کیا آج وہ آپ کا راج ہے؟ کیا وہ آپ کے جیون کا ہندو ہے قبول کرنے والا؟ کیا آپ کے جیون میں وہ یشو ہے جو کو کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے جیون کا نبی ہے سچا ہے جس نبی میں ہو کر کیول آپ بہت ہی پرسنوں کی پوری پڑی کھیل لیکن اس نبی میں ہو کر